ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
புலிய சச்சிதானந்த பகவான் கி, உமாபதி மகாதேவ கி, पवन सुत हनुमान की, जगदम्बा मैया की, सब संतों की, हरि ओम. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्वन्ति दिव्येस्तवे வேதைஷாங்கபதக்ரமோபநிஷதே காயந்தி யமசாமகா த்யானாவஸ்தி தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யமயோகினோ யஷாந்தன்ன விதுசுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நமஹ. நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவி சரஸ்வதி வ்யாஸம் தத்ோ ஜயமுதீரே. இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரி பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்யை வியாப்திதேவ்யே நமோ நம. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் சிவோஹம் சிவோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் சிவோஹம் சிவோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் ஷிவோஹம் ஷிவோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் சிவோஹம் சிவோஹம் 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 சச்சிதானந்தோஹம். போலியே சச்சிதானந்த பகவானே கீ. पार ब्रह्म परमेश्वर की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र सभागार पर, जहां नित्य प्रति संतों के मुखारविंद से ब्रह्म विद्या का चिंतन होता रहता है, और जहां अनेक आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रवृत्तियां इस दिव्य भवन के अंदर होती रहती हैं और आप सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके कुछ क्षण अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझने के लिए अध्यात्म चिंतन के लिए एकत्र होते हैं। यह कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही ऐसा होता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, कोई व्यक्ति हजारों में बिरला होता है, लाखों की संख्या से छट छट करके हजारों में निकले और हजारों से भी छट करके सैकड़ों में निकले, सैकड़े से भी निकल के छट करके कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस चिंतन के माध्यम से, आध्यात्मिक विचार के माध्यम से और मनन चिंतन स्वाध्याय आदि के सत्संग के द्वारा स्वस्वरूप को समझ करके उस आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर पाता है। ऐसा आत्मनिष्ठावान व्यक्ति जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है, वो सर्वत्र परम पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है और वह सदा सदा सर्वदा के लिए पूज्य है। ऐसा सत निष्ठावान महापुरुष संत जहां नित्य आते हों और अपने आध्यात्मिक चेतना के द्वारा, अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा उपदेश आप सब लोगों को देते हों और आप लोगों को सुनने का ऐसा सुंदर अवसर मिलता हो, ऐसा पावन स्थल सत्संग और जहां के प्रमाणों में भगवत चिंतन हो, ऐसे दिव्य स्थल पर बैठकर प्रातःकाल की इस पावन बेला में ब्रह्म स्वरूप का, हमारी ब्रह्म विद्या का जो अत्यंत पावन और वेदों का उपदेश है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो साक्षात मध्यानंदिनी शाखा और यह जो उपनिषद है, ईशावास्य की मैंने पहले आपको विशेषता बताई थी कि यह जो मंत्र है यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और जिस मंत्र संहिता, ये मंत्र भाग में ये उपनिषद है, इसलिए इस उपनिषद का अपने आप में बहुत बड़ा आदर है, सम्मान है। विद्वान लोग तो कहते हैं कि ईशावास्य उपनिषद यह जो 18 मंत्र हैं, इन्हीं 18 मंत्रों का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से दिया तो जिससे भगवत गीता की उत्पत्ति हुई। भगवत गीता की यदि जननी ईशावास्य उपनिषद को कह दिया जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। भगवत गीता में जो 700 श्लोक हैं, उन 700 श्लोकों का जो उपदेश तत्व है वह ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों के द्वारा है, जिसकी चर्चा पिछले साल हम लोगों ने बड़े विस्तार के साथ की थी और एक एक मंत्र को विचार करते हुए हम 6 मंत्रों तक पहुंचे थे और जिस पर चर्चा हुई थी कि जो मंत्र रह गए हैं 7वें मंत्र से अगली बार समय मिलेगा उस पर विचार करेंगे, ऐसा पिछले चिंतन हुआ था। तो आइए, यह उपनिषद प्राय आप लोगों ने संतों के मुंह से सुनी होगी, पढ़ी होगी, परंतु जितना इसे सुना जाए, जितना इसे पढ़ा जाए, जितना इसे समझा जाए, उतना ये नित्य नूतन रस को, आनंद को देने वाली है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक है पर एक सत्य को जब अनेक के द्वारा बताया जाता है, कहा जाता है, समझाया जाता है, प्रत्येक वक्ता की अपनी शैली है, अपना प्रस्तुतिकरण है, और जिसका जितना सुंदर प्रस्तुतिकरण होता है उतना ही ज्यादा रोचक होता, आनंददायी होता है। परंतु तत्वतः उसका जो लाभ है वह तो सबका एक है, अनात्मा की निवृत्ति, आत्मनिष्ठा की प्राप्ति। वृक्ष ने बहुत गहरी जड़ें जमाई हुई है, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक गई है, बड़ा भारी सघन वृक्ष है जिसके शाखाएं उपशाखाएं तना बहुत फैला हुआ है, बड़ा विस्तार है वृक्ष का, जड़ें बहुत गहराइयों में गई हुई है। और ऐसा वृक्ष हम चाहें कि इस वृक्ष को हमें जड़ से सुखाना है, टहनी को काट काट करके यदि हम गिराने लगे और सोचें कि इस वृक्ष ये सूख जाए, बोले नहीं सूखने वाला है, इसकी फिर शाखाएं निकल आती हैं, उप शाखाएं निकल आती हैं और ये वृक्ष निरंतर बढ़ता चला जाता है। ऐसे वृक्ष को समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? बोले करना यही होगा कि जिन जड़ों के ऊपर मिट्टी जमा है हमें उस मिट्टी को हटाना है, और जैसे जैसे उन जड़ों को रोशनी मिलती चली जाएगी, प्रकाश मिलता चला जाएगा, वैसे वैसे ये वृक्ष सूखता चला जाएगा। उसी प्रकार अज्ञान रूपी वृक्ष ने हमारे अंदर इतनी गहरी जड़ें जमा रखी है, एक जन्म की नहीं अनेक जन्मों से ये इतना अज्ञान गहरा बसा हुआ है कि ये सूखने में नहीं आ रहा। इसका वृक्ष, ये अज्ञान वृक्ष इतना फैला हुआ है कि जिसका व्रत रूप हमें देखने को मिलता है, मैं मेरे के द्वारा इस संसार कितना विस्तार है। और इस वृक्ष को ये बाहर से दिखने वाला वृक्ष नहीं, ये अपने भीतर है ज्ञान रूपी वृक्ष। इस वृक्ष को हम सुखाना चाहें तो इसके लिए एक ही उपाय है। संत कहते हैं, उपनिषद कहती हैं, हम चाहें कि ये वृक्ष सूखे, इसके लिए क्या करें? वृक्ष के पास बैठ करके बड़ी जोर जोर से कोई कर्म का अनुष्ठान करें, यज्ञादि करें, जिससे ये वृक्ष सूख जाएगा? बोले नहीं, यह यज्ञादि के अनुष्ठान आदि के द्वारा भी सूखने वाला नहीं है। और कोई कहे कि उपासना करो, कर्म करें, उपासना करें, बोले उपासना से भी नहीं। तब क्या करोगे? अंतःवृत्ति करके ध्यान करें, शायद ध्यान से दूर हो जाए। वृत्ति के निरोध करने से जो वृत्ति बिखरी हुई है, चित्त वृत्ति निरोधानम, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके बैठ जाएं, योग के द्वारा इसको दूर करें, बोले योग से भी समाप्त होने वाला नहीं है। रिते ज्ञानान्य मुक्ति, इसलिए ज्ञान के बिना ये वृक्ष मिटने वाला नहीं है। एक श्रुति का एक सिद्धांत है, ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, ज्ञान के बिना ये वृक्ष समाप्त नहीं हो सकता। प्रकाश के बिना जैसे अंधकार समाप्त नहीं हो सकता, उसी भांति ज्ञान के बिना अज्ञान दूर नहीं हो सकता। जब तक तत्वानुज्ञान, तत्वानुबोध नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। और उस आत्मा के लिए जिसके लिए ये कहा गया है, पहले इस उपनिषद में आप लोगों ने सुना कि जो उस आत्मा को नहीं जानते हैं वो लोग क्या हैं? बोले वो लोग आत्मघाती हैं। जो इस आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं उसके लिए कह दिया कि वो सब लोग बड़े आत्मघाती हैं, आत्महनोजना, वो तो आत्मघाती हैं। अर्थात परमात्मा को जानने से ही उस आत्मघात से, आत्मा को जाने बिना वो आत्महत्यारे हैं, हत्यारा उसे कहा, बोले जब तक उस आत्मघात से बचे कैसे, उसके लिए आत्मस्वरूप को जानो। और आत्मा के स्वरूप को मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, आत्मा ही परमात्मा है। जहां पर उपनिषद आत्मा संबंध आत्मा शब्द को कहकर बताती है, वह उसका अर्थ आत्मा से अभिप्राय परमात्मा को ही समझना चाहिए। और जहां श्रुति परमात्मा शब्द से समझा रही है, वहां हमें आत्मा को ही समझना चाहिए, आत्मभाव से ही समझना चाहिए। इसलिए कहा कि हमें उस आत्मा को जिसने जान लिया, तब उसके लिए सातवें मंत्र में छठे मंत्र और सातवें मंत्र के द्वारा यह उपनिषद ये बताना चाहती हैं कि जिसने यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मनैवाभुजानतः तत्र को मोह को शोक एकस्त्वम् अनुपश्यतः। जिसने यस्मिन् सर्वभूतानि, जिस समय ज्ञानी पुरुष सर्वभूत आत्मा ही हो गया है, अर्थात सर्वभूत में उसे एक आत्मदर्शन हो रहा हो, आत्मा दिख रहा हो और सर्वभूत रूप हो गया हो, अर्थात यह जो पंचभूत है, पहले तो यह कहकर समझाया ये जल है, ये पृथ्वी है, ये वायु है, ये आकाश है, पंचभूतों को पृथक पृथक कर अलग अलग करके कहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं, वायु भी नहीं, अग्नि भी नहीं, आकाश भी नहीं, न देह है, न बुद्धि है, न अहंकार है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर सबको जिससे अलग कर दिया। और उसी वही फिर सर्वभूतेषु सब में ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही, सर्वभूत रूप आत्मा हो गया। पहले ये समझा कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और फिर यह समझा कि यह भी वही है, यह भी वही है, यह भी वही है। सर्वभूत आत्मा दृष्ट होने पर, आत्मा अनुभूति होने पर, सर्वभूत रूप जब आत्मा को जानने लगता है, एकत्व मनुपश्यति, श्रुति कहती है एक को ही जब देखने लगता है, तो ऐसा जो विद्वान है उसके लिए कहां शोक है और कहां मोह है। कहा शोकम, कहा तो उसके लिए मोह है और कहा फिर उसके लिए शोक, शोक मोह ये दोनों कुछ नहीं रह जाता संसार में। ये शोक और ये मोह तभी तक है जब तक उसे ये द्वेत, ये फर्क, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अर्थात जब तक अपने से भिन्न दिखाई पड़ रहा है। और जब अपने से अलग नहीं दिखाई पड़ता, बोले कब नहीं दिखाई पड़ता, पहले हमें समझना होगा। उड़िया बाबा जी से किसी ने एक बार पूछा, महाराज आप जो दिखते हैं ये आप ब्रह्म हैं या आप जो बोलते हैं वो ब्रह्म है, जो आप बोलते हैं वो ब्रह्म है या आप जो दिखते हैं वो ब्रह्म है? उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म हूं। अर्थात कहने का अर्थ ये था कि जिस समय जब तक अविद्या है, आत्मानुभूति नहीं है, तब तक ये सब अलग 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 करके दिखते हैं। और अलग अलग करके समझना ही चाहिए, क्योंकि जब तक पंचभूतों को, इस प्रपंच को अपने से अलग नहीं देखेंगे और जब तक ये प्रपंच अपने में ही दिखता रहेगा, हम प्रपंच को ही अपना स्वरूप मान बैठेंगे और अपना स्वरूप समझ करके इसके साथ हमें इसके सुख में सुख, दुख में दुख, हानि में लाभ, हर्ष शोक, मोह शोक, ये सब हमको भासता रहेगा, व्याप्त होता रहेगा। और जब विचार काल में गंभीरता पूर्वक हम विचार करने के लिए बैठते हैं तो एक एक कर जब सांप को अपने से अलग हटाते हुए हम स्वस्वरूप में हमारी स्थिति बनती और मैं के साथ आत्मसात होने पर, मैं के साथ आत्मसात का अभिप्राय है कि वो मैं जो अहंकार जन्य मैं है वो नहीं, वह वृत्ति जो ब्रह्म चिंतन करते 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 वो वृत्ति साक्षात ब्रह्म में ही लीन हो गई है, ब्रह्मवित हो गई। यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम, ब्रह्मवित हो गई वो वृत्ति और उस वृत्ति के ब्रह्म स्वरूप सब ब्रह्मभूत होने पर ऐसी स्थिति में उस आत्मवेता को, तत्ववेता को फिर ये अंतर नहीं दिखाई देता है कि यह पंचभूत अलग हैं। वह अपने अपने स्वरूप को ही इस व्याप्त रूप में सर्वत्र एकत्व मनुपश्यति, अपने एक ही स्वरूप को देखता है सर्वभूतों में, सर्वभूत रूप हो जाता है। और सर्वभूत रूप हो जाने पर उसके लिए अंदर कहां मोह रह जाता है और कहां उसके अंदर कोई शोक रह जाता है। अर्थात जो मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिस मोह के कारण हम संसार में दुखी होते हैं, गंभीरता से विचार करें तो संसार में दुख का कारण क्या है, यही कारण खोजना चाहा था महात्मा बुद्ध ने। संसार के दुख का कारण है क्या है, तो बात समझ में आई संसार के दुख का कारण तो मोह है। मोह के कारण ही तो व्यक्ति दुखी है। और यह मोह छूटे कैसे, मोह से निस्तारा कैसे हो, मोह छूटे कैसे, बोले मोह को छूटने के लिए हमें मोह कैसे छूटे, बोले जब तक तत्वानुबोध नहीं होगा तब तक ये मोह छूटने वाला नहीं है। ज्ञान से ही ये मोह छूट सकता है। तो उसके लिए क्या करें, सत्संग करते हैं और सत्संग करके स्वाध्याय करके जब हम अपने भीतर उस आत्मवृत्ति को, आत्मभाव को, आत्मवृत्ति में हमारी स्थिति बनती है, सब को अपने से अलग पृथक मैं, आत्मस्वरूप को अपने स्वरूप को जानने से ही सरल शब्दों में कहा जाए तो जब तक स्व आत्म स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक ये मोह नहीं छूट सकता। इसके लिए स्वरूप भूत बोध होना परम आवश्यक है। तो कहा उपनिषद कहती है कि तत्र का मोह कोसों का, उसे कहां मोह है, मोह नहीं है, मोह होता है वर्तमान के साथ, शोक होता है जो बीत चुका है, वर्तमान के साथ आसक्ति है। यह जो कुछ भी हमें वर्तमान में प्राप्त है, प्राप्त विद्या, प्राप्त बुद्धि, प्राप्त शरीर, प्राप्त वस्तु, जो कुछ भी वर्तमान के साथ हमें मिला हुआ है, हमारी भावना रहती है कि ये सब कुछ हमारे पास ज्यों का त्यों, जस का तस बना रहे, इसमें से कुछ बिगड़े नहीं, कुछ खराब नहीं हो। और इतना ही नहीं, हमारी ये भी चाह रहती है कि वर्तमान की जो कुछ भी मेरी उपलब्धियां हैं, वर्तमान की जो कुछ भी मेरी सफलताएं हैं, वर्तमान की जो कुछ मेरी प्राप्ति है, ये मैं से आगे भविष्य की ओर ले चलूं, ऐसा ही मैं आगे ले चलूं। हम आगे करना चाहते हैं, पर काल का स्वभाव है कि वो धीरे धीरे पीछे होती चली जाती है। हमारी चाह से हम उसे आगे करना चाहते हैं और प्रत्येक वस्तु बनने के साथ, पैदा होने के साथ वो बिगड़ने में शुरू हो जाती है, नष्ट होने को तैयार होती, नष्ट घटती बिगड़ती चली जाती है। पर हमारी चाह रहती है कि हम ले चले, आगे की चले, और उसके नष्ट होने पर बड़ा भारी शोक होता है, दुख होता है। बोले ये सब शोक और मोह, उपनिषद कहती है कब तक है, जब तक कि उसने अपने आत्म स्वरूप को नहीं विचारा है और उस विचार पूर्वक उसकी आत्मनिष्ठा नहीं बनी। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस समय, मैं कई बार ये बात कहती हूं कि भगवान ने हमें बहुत सुंदर एक मौका दिया। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि मैं कहती हूं कि ये भगवान, ये शरीर हमें किसी कर्म से मिला ऐसा नहीं, ये हमें भगवान की कृपा से मिला। भगवान ने हमें एक अवसर दिया, मौका दिया है, बहुत सुंदर मौका दिया, ये मनुष्य शरीर देकर मौका दिया कि शरीर को देकर हम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, हमारी निष्ठा को हमें इतना तो दृढ़ कर लेना चाहिए कि मैं अपने विषय में, मैं समझ लेना चाहिए। बोले किसके विषय में? अपने आप के विषय में। अपने को समझकर, अपने को जानकर, अपने को मानकर, अपने को पाकर, अपने को पक्का कर लेना चाहिए। बोले क्या पक्का कर लेना चाहिए? कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवत स्वरूप ही हूं,